हैं कि हमारा राबता हो पाकिस्तान में सरवत एजाज कादरी साहिब से भी, और हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमें बताया जा रहा है कि वो इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम
वालेकुम अस्सलाम।
सरवत एजाज कादरी साहिब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अहले बैत टीवी की जानिब से कि आपने रात के इस पहर में हमारे लिए वक्त निकाला।
आपका बहुत शुक्रिया कि आपने याद किया और
मैं नाज़रीन की
इतने।
खिदमत में पेश करता चलूं कि मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहिब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी जो शिया सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से काम कर रहे हैं, इनमें इनका बहुत नुमाया किरदार आप कह सकते हैं। और जिस तरह ये आपस में एक लड़ी में परोने की कोशिश कर रहे हैं तमाम मुस्लिम उम्मा को, हम दुआ करते हैं कि ये तमाम कोशिशें इनकी रंग लाएँ और ये इनमें कामयाब हों। मौलाना, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह आशूर के रोज़ पाकिस्तान के हालात को बहुत बुरे तरीके से ख़राब करने की कोशिश की गई, और इस वाक़या को शिया और सुन्नी लड़ाई और इसमें तफरके का बायस बनने का जो अंसर था उसको ताबीर किया गया इससे, ताकि शिया और सुन्नी को आपस में लड़ाया जाए, लेकिन बाशऊर शिया और सुन्नी नौजवानों ने और इस मिल्लत ने इन तकफीरी ग्रोहों का मुकाबला किया और उन्हें ये उनको इस पर मजबूर कर दिया कि वो इस पर ये कहने पे मजबूर हो गए कि शिया और सुन्नी का जो इत्तेहाद है वो इसके आगे बिल्कुल हार गए। तो इस हवाले से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या बयान करेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हम ये समझते हैं कि क्या कहते हैं, इस्लाम बिला तफरीक मजहब रंग और नस्ल किसी भी इंसान की ना हक कतल की इजाजत नहीं देता है। लिहाजा ऐसे कातिल ग्रोह की हर सतह पर हौसला शिकनी की जानी चाहिए, और जो लोग इस्लाम के नाम पर कत्लो गरदगिरी करते हैं फसाद फिल अर्थ के मुरतकिब होते हैं। लिहाजा इस्लाम के इन दावेदारों को, इन नाम नेहाद मजहबी वडेरों को इस्लाम की सही तालीमात फराहम की जानी चाहिए। और हमने इसका जिक्र यकीनन सूरह मुआहिदा आयत नंबर 33 की रूह से भी कि मुस्लिम रियासत इज्तिमाई नज्म और जब्त के खिलाफ मुस्लिम बगावत को ताकत से कुचलने का हुक्म है। और जैसे मेरे कुरान हकीम में फरमाया है कि जो लोग खुदा और इसके रसूल से लड़ाई करें, मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरे, इनकी यही सजा है कि कत्ल कर दिए जाए या सूली पर चढ़ा दिए जाए, और या इनके एक एक तरफ के हाथ को, एक तरफ के पांव को काट दिए जाए या मुल्क से निकाल दिए जाए। तो ये तो दुनिया में इनकी रुसवाई है और आखिरत में इनके लिए अजाब तैयार है। और जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई शिया सुन्नी फसाद है, तो ये हम शुरू से हमारा मोटो रहा है कि हमने ये कहा पाकिस्तान के अंदर कोई शिया सुन्नी फसाद नहीं है। ये वही लोग फसाद बर्पा कर रहे हैं, ये वही लोग फिरका वारियत के मुरतकब हो रहे हैं जो लोग पाकिस्तान बनाने के शुरू से खिलाफ थे। तो यकीनन इनके लिए हुकूमत को सजाएं मुंतखब करनी चाहिए, इनको कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए इनके, और ये हमारे सामने यकीनन अब तो आया हो चुके हैं। और हमने हमेशा हक और सच के लिए बुलंद किया, इत्तेहाद के लिए काम किया कि आज हमें मुस्लिम उम्मा को एक होकर इन सेकुलर कुवतों के सामने डट कर मुकाबला करना होगा। तो तमाम मजहबी कुवतों को एक जगह इकट्ठा होकर इन सेकुलर कुवतों का, इन साम्राज्य कुवतों का मुकाबला करना होगा। जो पूरे आप पूरे अगर देखें, पूरी दुनिया में अगर आप देखें कि हर जगह, वो आप पाकिस्तान से शुरू हो, इराक हो, लबनान हो, फलस्तीन हो, हर जगह सिर्फ मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। यकीनन इसमें हमारे हुक्मरान भी बराबर के जिम्मेदार हैं और उन सबको मिलकर इसमें सोचना होगा।
सरवत एजाज कादरी साहिब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कुछ देर पहले अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहिब हमारे साथ मौजूद थे और हमने उनसे गुफ्तगू की इस हवाले से कि पाकिस्तान में हुकूमत बिल्कुल और रियासत की जो जिम्मेदारी होती है शहरियों के हकूक़ की, उनके तहफ्फुज़ की, बिल्कुल उसमें नाकाम हो चुकी है, और हुकूमत में कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं कि जो दहशत गर्दों की पुष्त पनाही कर रहे हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और बाकी जो तंजीमें हैं इस वाले से अपना क्या किरदार अदा कर रही हैं कि हुकूमत में जो ये छुपे हुए अनासिर हैं इनको किस तरह एक्सपोज किया जाए?
देखिए वो उसका तरीका सीधा है कि करबला जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जालिम जाबिर फासिक के सामने डट जाना और कलमा हक को बुलंद करना यही हुसैनियत है।
माशाल्लाह,
और जो लोग इसके बरखिलाफ है, जो जो कौम जुल्म जबर इंतहा पसंदी दहशत गर्दी के खिलाफ और हुकूक के उसूल के लिए आवाज बुलंद नहीं करते, हम समझते हैं कि उनका शुमार यजीदी लश्कर में होता है, यानी कि जो इस जुल्म में शरीक हो, जो इस जुल्म में साथ दे, तो वो ऐसा है जैसे यजीदी लश्कर का साथ दे दे। तो ऐसे में यकीनन कौम हमारे हुकूमतों को सोचना है, जो दुश्मन हमारे सामने है, हमारे जिन्होंने 50,000 नौजवानों को, इमाम बारगाह को, योम आशूरा के प्रोग्रामों को, रबीउल शरीफ के प्रोग्रामों को हमेशा दहशतगर्दी का निशाना बनाया, तो ये खास माइंड सेट के लोग हैं, ये एक खास मकतबा फिक्र से इनका ताल्लुक है। लिहाजा हुकूमत को, इदारों को सोचना है कि अगर हमने मुल्क बचाना है, मुल्क के इस्तेकाम, मुल्क की सलामती हमें अजीज है, मुल्क का मफाद हमें अजीज है, और तो ऐसे लोगों से हमारे लिए कोई मसलहत पसंदी नहीं होनी चाहिए। और हमको कुरान शरीफ का, अल्लाह का फरमान हमारे सामने, अल्लाह का हुकूम हमारे सामने, उनका एक हाथ एक पैर काट दिया जाए, उनके लिए सख्त सजाएं मुरतब की गई है, उनके लिए सख्त सजाएं रखी जाए, उनके लिए कानून साजी की जाए, उनके साथ किस किस्म के मफादात, उनके साथ किस किस्म के मुजाकरात, उनके साथ किस किस्म की ये मसलहत पसंदी, यकीनन हमें जब तक हम मसलहत पसंदी से बाहर आकर मुल्क के मफाद का नहीं सोचेंगे, आज इस्लामी तशख्स को बर्बाद किया जा रहा है। यानी कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना, मुकद्दस हुरमत वाला महीना, यानी कि अगर हम आज से 1400 साल पहले जाए, जब इस्लाम नहीं पहुंचा था, जहालत का दौर था, तो उस वक्त भी लोग इस माह मुहर्रम की हुरमत के अंदर, इस हुरमत वाले महीने में अपनी तलवारें नीचे रख दिया करते थे, और आज हम उन लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं जिनको ना मुहर्रमुल हराम का पता है, ना रबीउल शरीफ का पता है, तो इन्हीं को क्यों निशाना बनाया जाता है, इन्हीं के साथ क्यों ये ज्यादती हो रही है। तो यकीनन हमारी हुकूमत को भी सोचना है कि हमें इस जो लोग आज एपीसी बुलाई जाती है, तो उधर कातिलों को तो नुमाइंदगी है, लेकिन मकतूलों से नहीं पूछा जा रहा।
बिल्कुल,
ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो एक लावा पक रहा है, और इसमें हमारे हुकूमत को सोचना होगा। और
मौलाना, यहाँ पे आपने जिस बात की तरफ इशारा किया कि एपीसी बुलाई जाती है और कातलों की नुमाइंदगी होती है लेकिन मकतूलों की, बिल्कुल अगर आप पिछले दिनों के अगर मीडिया पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देखें कि जिसमें कालअदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बुलाया जाता है, और उसमें जो पाकिस्तान के अक्सरियती मसलक जो आबादी रखते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है, तो इस हवाले से जो मीडिया ये किरदार अदा कर रहा है, इसमें आप मीडिया का किरदार किस तरह देखते हैं?
मीडिया को भी यकीनन जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। एक तो देखें, जब आपके इदारे उनको, उनके इदारे आपने हमारे या हमने नहीं उनको कलदम करार दिया, हमने उनको एहसास नहीं कहा, जिन्होंने 100-100 कत्ल किया, आज हुकूमत ने उनके हेड मनी फिक्स की है, उसके बावजूद उनको खुलेआम मीडिया भी कवरेज कर रहा है, उनके टॉक शो के अंदर वो बैठे हुए हैं, टॉक शो में उन्हें अहमियत दी जा रही है, तो फिर उनके उनके अंदर जब हुकूमत का खौफ नहीं होगा, हुकूमत की रिट कायम नहीं होगी, तो फिर हम किस तरीके से दहशतगर्दी को खत्म करेंगे? जो लोग 100 कत्ल करते हैं वो मीडिया में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, जो टॉक शो के अंदर बैठ रहे हैं, आज अहले सुन्नत के नाम से काम कर रहे हैं, हम इनका अगर बैकग्राउंड देंगे तो इन्होंने सिपा साहबा के नाम से दहशतगर्दी की, इन्होंने लश्कर जंगी के नाम से दहशतगर्दी, उसके बाद इन्होंने मिल्लत इस्लामिया के नाम से दहशतगर्दी की, अब जब ये नाम इन्होंने इन्होंने अहले सुन्नत का नाम लगा लिया, लेकिन अहले सुन्नत को बदनाम करने के लिए, अहले सुन्नत का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना कभी आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई शिया सुन्नी फसाद हुआ जिसके अंदर हुआ, ये एक खास गैर मुल्की फंडिंग है जो हमारे यूटिलाइज हमारी यूज की जा रही है। एक हफ्ते असले के बुतियात पर नफ्त नजर को इम्पोज करना, मेरे ख्याल से ये सरासर नाइंसाफी है हमारे इदारों की, हमारे मीडिया, कम से कम इन सबको अब सोचना होगा कि आज हम ये जो लोग, या तो हम उनके लिए, हमने उनके लिए हुकूमत ने कानून बनाया कि ये दहशतगर्द है, ये कलदम है, उसके बाद वो दूसरे नामों से काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई कानून नहीं है। हम मुशर्रफ के लिए तो आर्टिकल 6 को यूज कर रहे हैं, एक आदमी को इसने ये मुल्क को बर्बाद किया है, आइन तोड़ा है, और जो आइन के बागी हैं, जो आइन के मुनाफी काम कर रहे हैं, जो शरीयत के बागी हैं, जो इस्लाम के बागी हैं, दहशतगर्द है, जो उनके साथ फिर मुजाकरात किस बात के हैं, उनके लिए सजाएं क्यों नहीं होती,
बिल्कुल
उनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं होता, उनके लिए क्यों जेल और कैद जेल में उनके लिए क्यों नहीं, उनके लिए मखसूस की जाती, उनके लिए अदालतें क्यों नहीं कायम की जाती,
मौलाना, मैं यहाँ आपसे
इसलिए
यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरह आपने जिक्र किया कि उनसे मुजाकरात की बातें होती हैं, तो कुछ सियासी पार्टियों की जानिब से जो तालिबान मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, बच्चों को, औरतों को, उनसे एक तो मुजाकरात की बात की जाती है और कुछ लोगों की जानिब से उनको शहीद का लकब दिया जाता है। तो इस हवाले से यानी आप किस तरह देखते हैं कि क्या ये बिल्कुल इस्लाम की तालीमात के मुनाफी नहीं कि जो लोग हजारों लोगों का कत्ल कर रहे हैं उन लोगों को शहीद का लकब दिया जाता है?
यही यही बात कहना चाह रहे हैं हम यही कह रहे हैं कि बेगुनाह लोगों के कत्ल का शरई जवाब जो पेश करते हैं वो दरअसल शरीयत का मजाक उड़ाने के मुतादिफ है। लिहाजा हमें इन खुद साख्ता नाम नयात इन मजहबी वडेरों से जान छुड़ानी होगी जिनका चेहरा आप सबके सामने आया है, जिनका कुत्ता मर जाए तो वो शहीद है, और जो 50,000 जो इस मुल्क की दहशतगर्दी का निशाना बने, वो 6,000 नौजवान, वो जनरल नियाजी से लेके एक सिपाही तक जो दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं, उनके हम उनकी शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका फैसला ये करेंगे। जिसका फैसला कुरान कर रहा है उसकी शरीयत के मुनाफी इनके फैसले हो रहे हैं। यकीनन हमें ये हमारी कौम को अब सोचना है और हमारे इदारों को सोचना है, हमारे उन तमाम इदारों को जिनका एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए जो कि नजर नहीं आ रहा, उनको प्ले करना चाहिए ताकि इस्लाम के जो तशख्स को जो मस्ख किया जा रहा है उसके उसको बचाना है तो उसके लिए हमें सजाएं और उनको अदालत के कटहरे में लाना चाहिए। और मैं एक छोटा सा एक एक बात है जो मैं समझना चाहता हूँ, यकीनन मेरी आवाम के दरबार में ये एक सवाल है कि वो जो जो जब खुदकुशी हलाल नहीं, खुदकुशी हराम, मैं एक अपनी जान नहीं ले सकता लेकिन वो 70 आदमी की जान ले रहा है वो जायज कैसे? वो हराम है हमारे मुफ्ती हमारे उलमा इकराम के नजदीक, वो शरण हराम है, हराम है, हराम है, उसके लिए फतवा मौजूद है, किताबें मौजूद है, उसका बाकायदा 500 हमारे उलमा इकराम ने मुफ्ती इकराम ने बाकायदा इसके लिए फतवा जारी किया है कि वो बेगुनाह की जान लेना तो वो शरण जायज नहीं है। तो लिहाजा हम समझते हैं कि इनके लिए कानून ने सजा मखसूस की हुई है कि उनको हाथ और उनके पैर, एक एक हाथ और एक एक पैर को काट दिया जाए, अगर फिर भी बाज ना आए तो उनको मुल्क से निकाल दिया जाए, और फिर ना आए तो उनको उनको कत्ल का हुक्म है। तो लेकिन जब शरीयत ने हमारे सूरह मायदा आयत नंबर 33 के अंदर इसकी तफसील मौजूद है, सूरह मायदा आयत नंबर 33 के अंदर, तो ये अल्लाह का हुक्म है। हम वैसे तो सारे काम कर रहे हैं दुनिया के लिए हम सोच रहे हैं, लेकिन जो लोग शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं, जो शरीयत के बदनाम कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास कोई सजाएं नहीं है।
बिल्कुल मौलाना,
लेकिन
मैं
जब तक
आपसे
सजाएं
यहाँ
उनका
पे
तयन नहीं होगा, जब तक उनको दहशतगर्दों को सूली पर नहीं लटकाया जाएगा सरेआम, जब तक बहुत मुश्किल है कि हम दहशतगर्दी को खत्म कर सकें।
यहाँ पे जिस तरह आपने जिक्र किया कि हुकूमती इदारे और रियासत जो हैं तो वो तो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप पिछले कुछ दिनों के बयानात उठाकर देखें तो कुछ कलदम तंजीमों की जानिब से और ये जो तकफीरी टोला है उसकी जानिब से ईद मिलादुन नबी के जुलूस और रजादारी के जुलूस, इनको इन पर पाबंदी लगाना, इनको महदूद कर देना इमाम बारगाहों तक, मसाजिद तक, तो क्या ये खुला जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं है पाकिस्तान के आइन की? और जिस तरह के पाकिस्तान के अक्सरियती मसालिक हैं शिया और सुन्नी, क्या वो अपनी बिल्कुल आज़ादी नहीं रखते कि वो अपने दीन की इस तरह आज़ादी हक रखें कि वो आकर बाहर जुलूस आज़ादारी जुलूस मिलादुन नबी कर सकें?
जी बिल्कुल है, ये नामुमकिन में से है कि ये रोक सके किसी जलसे जुलूस को, और हमारी बल्कि हमने इस पहले भी कहा था, इन्होंने साने नश्ता पार्क हुआ उसमें हमारे 63 उलमा इकराम को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। साने नश्ता पार्क को आपने देखा होगा, वो 12 रबीउल शरीफ को हुआ और 12 रबीउल शरीफ कितना हुरमत वाला दिन है,
बिल्कुल
उस वक्त इन्होंने दहशतगर्दी का निशाना बनाया, लेकिन आज तक ये किसी जलसे जुलूस को रोक नहीं सके इतनी तमाम तर दहशतगर्दी के बावजूद। मैं समझता हूँ यही तो यही यही हुसैनियत है कि जुल्म और जबर के सामने इन के सामने डर जाना, और मैं समझता हूँ कि ये त्यौहार इसी तरह मनाते रहेंगे, वो आका का मिलाद हो या हमें आशूरा हो, सारी तकरीबात इसी तरह होती रहेंगी, और हुकूमत को चाहिए कि इन दहशतगर्दों को इन कलदम तंजीमों को लगाम दें, और नहीं तो ये ना हो कि कल आवाम खड़े होकर खुद फैसला करने पर मजबूर हो जाए।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहिब कि आपने इस पहर में हमारे लिए वक्त निकाला। अहले बैत टीवी की पूरी टीम की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा।
मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका अता फरमाया।
बहुत
बहुत
शुक्रिया, आपने
शुक्रिया,
एक खसूसी दुआ
धन्यवाद।
में याद रखिएगा।